ओम शांति। 12 जनवरी 1984, आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं, सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हो। आज की मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, कितने साधन अपनाते रहते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। ऐसे अनुभवी होना, सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना, ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्मेंद्रियों के मालिक होना, जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है, जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वो मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं है, लेकिन अति सहज है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दुनिया के मानव तो समझते हैं यह कैसे होगा, इसी उलझन में बुद्धि द्वारा शरीर द्वारा भटकते रहते हो, और आप क्या कहते हो, कैसे होगा यह संकल्प कभी आ सकता है, कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता है कि ऐसे होता है, ऐसे अर्थात फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को बदलकर फुल स्टॉप लग गया है। कल क्या थे और आज क्या हो, महान अंतर है ना, समझते हो कि महान अंतर हो गया। कल कहते थे ओ गॉड, और आज क्या कहते हो, कल कहते थे ओ गॉड, और आज क्या कहते हो, माय गॉड। और आज ओ के बजाय क्या कहते हो, वाह। और क्या कहते हो ओ के बजाय, ओ गॉड के बजाय क्या कहते हो विठल भाई, ओ गॉड के बजाय अभी क्या कहते हो, पहले कहते थे ओ गॉड और अभी क्या कहते हो, वाह वाह गॉड, और वाह बाबा, और मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हाँ मेरे बाबा, और क्या कहते हो, पहले कहते थे ओ गॉड और अब कहते हो अभी क्या कहते हो, आहा गॉड। अभी क्या कहते हो, समझते हो महान अंतर हो गया। कल कहते थे ओ गॉड और आज ओ के बजाय क्या कहते हो, ओहो। आज कहते हो ओहो, कहते हो ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा, दूर से नजदीक में बाप मिल गया। अव्यक्त वाणी 84 12 जनवरी, आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं, सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति क्या है, आवाज से परे स्थिति में क्या है, सुख है और शांति है। सुख की और शांति की अनुभूति है। आवास से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हो। आज के मानव आवास से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते, कितने साधन अपनाते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के क्या हो, सागर हो। सेकंड में अपने शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो, ऐसे अनुभवी होना। सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना, ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्मेंद्रियों के मालिक होना, जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्माती स्थिति में स्थित हो जाओ, इसको कहा जाता है अभी-अभी न्यारे और अभी-अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव करते हो। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल समझते हैं, वो मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं है विनोद भाई। जिन बातों को दुनिया वाले मुश्किल समझते हैं, वो आपके लिए भी सहज नहीं है, तो क्या है? लेकिन अति सहज है। क्योंकि क्यों सहज है? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्योंकि पहले भी किया हुआ है। दुनिया के मानव तो समझते हैं कैसा होगा। इसी उलझन में बुद्धि द्वारा शरीर द्वारा भटकते रहते हैं, और आप क्या करते हो? कैसे होगा यह संकल्प कभी आ सकता है? कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क, तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता है कि ऐसे होता है। ऐसे अर्थात फुल स्टॉप, और कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ये मत पूछना ये कैसे करना, वो कैसे करना। कैसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन मार्क को बदल कर फुल स्टॉप लग गया। कल क्या थे और आज क्या हो? कल क्या थे और आज क्या हो? कल क्या थे? कल कल क्वेश्चन मार्क थे, आज फुल स्टॉप बन गए। ये अच्छा है, महान अंतर है ना, समझते हो ना कि महान अंतर हो गया। कल कहते थे ओ गॉड, और आज ओ के बजाय ओहो। क्या कहते हो? ओहो, मूल्यों में आता है ना, ओहो। मीठे बाबा, गॉड नहीं, लेकिन अभी परसों की मूल्य में था ना, गॉड ईश्वर प्रभु प्राप्ति इसमें नहीं है, उससे वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाबा कहने से मिलता है। लेकिन बाबा दूर से नजदीक में बाप मिल गया। तो सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे जाना, इसकी चर्चा हम कुछ दिन पहले कर चुके हैं। सेकंड में आवाज में आना है और सेकंड में आवाज से परे जाना। जब चाहो तब कर्म में आना, जब चाहो तब कर्म से परे चले जाना, कर्माती स्थिति में स्थित हो जाना। जब चाहो तब वाणी में आना और जब चाहो तब वाणी से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। ये करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बाबा ने कहा। दुनिया वाले सोचते हैं ये कैसे होगा, ये मुश्किल है। तुम कहते हो ये सहज नहीं है, अति सहज है। महान अंतर, ओ गॉड पुकारना तुमने बंद कर दिया है। अब तुम्हारी जो पुकार है वो ओ गॉड, हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ माय गॉड, ये सब की पुकार नहीं है। अब तुम्हारी पुकार कौन सी है? धन्यवाद की पुकार है। कौन सी पुकार है? शुक्रिया। ओएमएस, ओम शांति, शांत स्वरूप में स्थित रहना, और ओहो प्यार है उसमें। अब तुम ओहो कहते हो। तो यहां बाबा ने एक बात की है जिसकी हम चर्चा करेंगे, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रूल, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। जब चाहो तब स्वयं को समेट लेना और जब चाहो तब कर्म में आना। सेल्फ कंट्रोल अर्थात आत्मानुशासन, सेल्फ रूल अर्थात आत्मसंयम, आत्मानुशासन एक सेल्फ कंट्रोल है, एक सेल्फ रूल है, एक स्वयं पर शासन करना है, एक स्वयं का नियंत्रण करना है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रूल। बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, इंद्रियों को वश में करना, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के तीन तल है। सबसे स्थूल तल है देह और इंद्रिय, बॉडी और सेंसेस। दूसरा तल है संकल्प, विचार और भावनाएं। तीसरा तल है आदतें और संस्कार। इन तीन तलों पर क्या करना है, रूल करना है। किस पर रूल करना है, स्वयं पर रूल करना है, स्वयं पर शासन करना और कंट्रोल करना अर्थात आत्मनिग्रह, अर्थात आत्मसंयम, अर्थात सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंड। एक दूसरा शब्द अंग्रेजी में है सेल्फ इंडल्जेंस अर्थात भोग विलास, अर्थात विलासिता में डूब जाना, अर्थात आत्मनियंत्रण का न होना। वो एक जीवन है और दूसरा जीवन है आत्म अनुशासन का, आत्म संयम का, आत्म निग्रह का, सेल्फ रिस्ट्रेंट का, सेल्फ कंट्रोल का, अनुशासन का, सेल्फ रूल का। स्वयं स्वयं पर राज्य करना, अपने देह पर राज्य करना, अपनी इंद्रियों पर राज्य करना, अपने विचारों पर राज्य करना, अपनी भावनाओं पर राज्य करना, अपने आदतों पर राज्य करना, अपने संस्कारों पर राज्य करना। अलग अलग तल है कंट्रोल के। सबसे पहला तो कंट्रोल करना ही क्यों है, चलने दो जो चल रहा है। क्या करके देख लिया हो, तो दूसरों से प्यार करके देखने की बात थी। चरवाक फिलॉसफी है भारत में। चरवाक, चरवाक कहता है कि जीवन वैसे भी व्यर्थ है, ये धर्म की खोज पता नहीं भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ो, जो अब का समय है उसको सफल करो, ये जो भगवान ने सब दिया है इनका उपभोग करो, खाओ पियो और मौज करो, ऐसा एक सिद्धांत है चरवाक सिद्धांत। उसको विदेश में इपिक्यूरियन फिलॉसफी कहते हैं। इपिक्यूरियन अर्थात जिसका सारा रस भोजन में है, खाने में ही है, उसको इपिक्यूरियन लोग कहते हैं। तो कंट्रोल करना ही क्यों है, अब बोलो। कोई बीमारी भी हो रही हो तो बीमारी हो जाएगी तो दवाई ले लेंगे, हमारे पास मरीज आते हैं हम तो कहते हैं हम तो जो खाना है खाएंगे, आप दवाइयां बढ़ाते जाओ बढ़ रही है तो बढ़ाओ, दूसरी दो है तो तीन कर दो, चार कर दो, दवाइयां खाने में कोई ये नहीं है, हमको तकलीफ नहीं है, जो हम खाना है खाएंगे, दवाइयां आप बढ़ाते जाओ, परहेज कुछ नहीं बताना है, करना भी नहीं है, बताओगे भी तो भी होता नहीं हमसे, वो दूसरी बात है। तो कंट्रोल करना ही क्यों है विनोद भाई, स्वयं पर कंट्रोल क्यों करना है, क्यों अनुशासन करना है, खुद क्यों कंट्रोल करना है, आत्मसंयम क्यों जरूरत है, क्यों क्यों जरूर, नाती इंद्रिय सुख शांति, दूसरा कुछ हाँ, क्योंकि समय परिवर्तन होने का आ गया, अगर हम नहीं होंगे तो समय कराएगा। अच्छा, और बाद में बहुत तकलीफ होगी, फिर अभी परहेज कर लो, बाद में फिर जो कोई बीमारी हो जाए, शुगर हो जाए और फिर कहे कि अभी ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, कितना हृदय विदीर्ण हो जाता है मरीजों का। घर में वो बन रहा है और हम खा नहीं सकते, थोड़ा तो खाएं इतना तो समय एक तो कारण समय है, और भगवान कह रहा है संयम करो, और पहले संयम में थे फिर संयम खत्म हुआ टूटा, तो क्या क्या हो गया? देवताएं कैसे थे? कैसा जीवन था देवताओं का? जो द्वापर से व्यक्त मानव था का पतन हुआ, वो उसका कारण क्या है? असंयम, अनियंत्रण और कमजोर, क्या कमजोर हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, और हमें स्टेज पुकार रही है, और किससे? त्याग करने से। तेन तत्वे न भुग्निता, उपनिषद में एक वाक्य है, इस संसार की जितनी वस्तु है अगर तुम्हें उन्हें भोगना है ना, उनका उन चीजों को भोग कर ही उनका भोग करो, तो ही वो परम भोग है। तेन तत्वे न भुग्निता, महात्मा गांधी ने कई बार इस वाक्य को लिखा है कि यहाँ की चीजें जो है इनका परम भोग करना है। जैसे जिलेबी का अगर स्वाद लेना है और बहुत आनंद लेना है तो विधि है उसका त्याग। त्याग के ही उसका उपभोग करना। तेन तत्वेन भुग्निता, अर्थात उसका त्याग करो तो ही उसमें क्या रस है वो पता चलेगा। ऐसा उल्टा फिलॉसफी है थोड़ी। तो एक दूसरी बात है भोग। चलो, एक भोग का मार्ग है, एक संयम का मार्ग है। आज प्रश्न वही पूछा है ना, भोगी योगी में क्या अंतर है? निश्चय भोग का जो मार्ग है सब अच्छा है, परंतु उसमें तृप्ति नहीं है, बस तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अगर हाँ, तृष्णा अगर मिट जाए तो भी ठीक, अगर 10 लड्डू खाने से हो जाए काम पूरा तो भी ठीक, एक बार खा लिए बस अभी खाने की इच्छा नहीं है 10 दिन, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तृष्णा तृष्णा को जन्म देती है, प्यास प्यास को जन्म देती है, भोग भोग को खींचता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक बार भोग लू बस अब तृप्त हो गई आत्मा। तृप्ति है ही नहीं भोग में। 10 खा लो, 50 खा लो, 100 खा लो, फिर भी तृप्ति नहीं है। कुछ समय जाएगा, केवल एक पीरियड है थोड़े समय का अंतराल, वो अंतराल हो गया कि फिर से वासना जागती है, चाहे वो काम हो चाहे जिह्वा का रस हो, जिवेंद्रिय और रसेंद्रिय, जनेंद्रिय और रसेंद्रिय, दोनों का स्वभाव है अतृप्ति। दोनों ही अतृप्त ही रहते हैं, कितना भी भोगो कितना भी। ययाति की कथा है शास्त्रों में, ययाति राजा जब 100 वर्ष का हो गया तो यमराज आए उसको लेने के लिए। उसने कहा अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं जीवन में, अभी तो कुछ करना कितना करना बाकी है, मुझे बस थोड़ा समय और दे दो। पर वो मृत्यु के देवता ने कहा नॉट पॉसिबल, अगर तुम नहीं तो किसी और को मैं ले जाऊंगा। वो कहते हैं हाँ मेरे 100 पुत्र है, एक एक पुत्र से पूछता है, वो बेटे भी तो राजी नहीं होते, एक 80 साल का बेटा वो कहां से राजी होगा। वो कहता है आप ही नहीं राजी हो रहे, मैं आप 100 साल के जाना नहीं चाहते, मैं तो अभी 80 साल का हूँ, 60 साल वाला भी नहीं मानता है। पर जो एक छोटा होता है सबसे वो थोड़ा बुद्धिमान होता है, वो कहता है कि 100 साल के बाद में भी आप अतृप्त हो तो इसके अच्छा होगा कि मुझे ले जाओ, तो उसको ले जाते हैं और 100 साल और मिल जाते हैं उसको। 100 साल के बाद फिर से वो देव मृत्यु आती है तो वो कहता है कि अभी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे और थोड़ा समय दो, फिर तब तक नए 100 पुत्र हो जाते हैं, उसमें से फिर से एक तैयार हो जाता है, फिर ऐसे करते करते 1000 वर्ष जीता है वो ययाति। और फिर लास्ट में कहता है अब तो समझ में आ गया है, इच्छा तृष्णा वासना कभी तृप्त नहीं होती, उसकी फितरत में ही तृष्णा, उसकी फितरत में ही अतृप्ति है, स्वभाव ही उसका वो है। डिजायर का जो स्वभाव है वो है डिससेटिस्फैक्शन, वो सैशिएशन, एक तृप्ति का जो तल है वो कभी भी नहीं आता है उसमें। कितना भी खा लो कितना भी भोग लो अतृप्त ही रहती है। वंस मोर की कामना के साथ ही देह शरीर आत्मा शरीर से निकलती है, फिर नया शरीर पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे जठरे शयनम, फिर से मां के गर्भ में, फिर से मां के गर्भ में, ये क्रम चालू रहता है और अतृप्ति बनी ही रहती है। ये है भोग का स्वभाव। दूसरा है संयम। बिना लड्डू खाए व्यक्ति कितना दिन रह सकता है? 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल या सदा के लिए। भोग की सीमा है, संयम की कोई सीमा नहीं। कितना भी व्यक्ति स्वयं को संयमित कर सकता है, कितना भी, वो उसके ऊपर है। और जितना जितना वो संयमित करता है, उसे पता चलता है वो जो भोग था वो तो केवल एक संस्कार मात्र था, और वस्तुओं में एडिक्टिव नेचर है, व्यसनकारी है संसार की वस्तुएं। उदाहरण, आम का सीजन आता है, सब लोग इतने आम खाते हैं, कोई दिन में 4-5 आम तो चाहिए ही चाहिए मधुबन में, ठीक है। जब आम का सीजन आता है बहुत आम खाते हैं, सब खाते हैं। आम का सीजन पूरा हो जाता है, सीजन चला जाता है, उसके बाद कोई ये नहीं कहता कि मैं मिस कर रहा हूं आम को। वो तो सिगरेट पीने वाले को भी पता है, वो दारू पीने वाले को भी पता रहता है कि आज पैसे नहीं है, परंतु वो पैसे जमा करता है और पीता है। आम का सीजन पूरा हुआ, उसके बाद में कोई भी मिस नहीं करता, कितनी सहजता से उसे स्वीकार कर लेते कि आम का सीजन था, पूरा हो गया। ये स्वीकार की बात नहीं है, उसमें और एक बड़ा राज है। अभी दूसरा उदाहरण, कोई 3 मास तक रोज भोजन के बाद एक गुलाब जामुन खाए, ठीक है, भोजन हो गया, डिब्बा खोला, रखा ही हुआ है कमरे में ही, गुड़ खाओ, गुलाब जामुन खाओ या कुछ भी, कोई मीठी चीज, शक्कर, कुछ भी वो खाया, ठीक है, 3 महीने रोज खाया, सीजन पूरा हुआ गुलाब जामुन का, उदाहरण के तौर पर, डब्बा कमरे से बाहर निकल गया, उसके बाद सहज स्वीकार कर लेता है या खींचता है? क्यों?
एक दो दिन
नहीं, इतना आसान नहीं है, 1-2 दिन खींचेगा। संस्कार, आदत, संस्कार एक और राज है। इस संसार की जो भी नेचुरल चीजें हैं, रॉ अनकुक्ड, संसार में जो नैसर्गिक वस्तु है भोजन की, वो व्यसनकारी नहीं है। वो हर वस्तु जिसे पकाया जाता है वो व्यसनकारी बन जाती है। ये सूक्ष्म रहस्य है, उसमें एडिक्टिव हो जाती है कुक्ड। इसके लिए वो खींचता है, इसके लिए वो इंद्रियों को चलायमान करता है। ये एक फिलॉसफी है, रहस्य है सृष्टि का। तो हम बात कर रहे थे संयम और भोग की। संयम 5 चीजों में, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। साइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। रसनाएं है, रसिन रस है इसमें। योगी अर्थात जिसने इन 5ों को अपने वश कर रखा है, भोगी अर्थात जो इन 5ों के वशीभूत है, ये योगी और भोगी की परिभाषा है। योगी अर्थात वो सबसे पहला है रूप अर्थात आंख अर्थात साइट, जिसके नेत्र उसके वश में है, अर्थात रूप की ओर वो आकर्षित नहीं होते, अर्थात देह की ओर आकर्षित नहीं होते, अर्थात इस संसार का कोई भी जिसको नाम और रूप है वो उसको खींचता नहीं है। ऐसा आंखों का संयम। इसके लिए योगी पहले जमाने के कैसे चलते थे, नासिकाग्र दृष्टि, डाउनकास्ट आइज। डाउनकास्ट आइज अर्थात ये जो नासिकाग्र है, यहां देखना या नीचे, क्योंकि बाहर देखो तो बहुत सारी चीजें जो खींचती रहती है, ये अभ्यास करते थे। हाँ, फिर दिख जाए वो दूसरी बात है, परंतु आंखों का संयम, रूप, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड एक नियम है, अंग्रेजी में कहावत है कि जो आंखों से हट गया वो मन से भी हट जाता है। एक है कि मुझे ये जलेबी खाना नहीं है, पर उसको अपने कमरे में रोज रखा ही हुआ है, अब क्या करूं। नहीं, पर मुझे खाना नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल देखते हुए नहीं देखना। बाबा ने कहा, बाबा ने ऐसा तो नहीं कहा देखना ही नहीं है, बाबा ने कहा देखो पर नहीं देखो। तो ये अभ्यास चालू है देखते हुए नहीं देखने का, परंतु जब भी वेरेवर विजन कहो, दृष्टि कहो, क्या कहते हैं, एक दूसरा शब्द है, जहां पर हमारी नजर जाती है वहां पर एनर्जी जाती है, जहां हमारी नजर जाती है वहां एनर्जी खींची जाती है। अब जो चीजों से हमें कोई लेना देना ही नहीं है उनको ही अगर देखते रहो तो आसक्ति है नहीं पर होगी उत्पन्न। फिर ऐसी कुछ कुछ वस्तुएं जिनको हमें जिनसे दूर जाना है उनको कमरे से ही हटा दो। अगर देवी देवताओं के चित्र कमरे में रहते हैं तो न चाहते हुए भी दृष्टि जाती है और न चाहते हुए विचार जाते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए और संसार के अश्लील चित्र रखे जाए और हम योग तपस्या जारी रखें, ठीक है, तपस्या हम जारी रखें और हम ये सोचे इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, ये तो है और क्या है और नहीं है कुछ मेरे लिए कुछ नहीं, परंतु देख देख के और देख देख के तृष्णाएं और इच्छाएं उत्पन्न होगी। काजल की कोठरी में दाग दाग लागे ही लागे। इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जिसको आंखों के सामने से ही हटा दो। पता है एक व्यक्ति खींचता है, नंबर ही हटा दो उसका, आ जाए तो बहुत अच्छा, वो सामने आना बहुत कम खतरनाक बात है, परंतु दूर रहना और फिर भी आंखों में समाये रहना, मन में बसा रहना, ये खतरनाक बात है। आंखों के सामने वाले तो जो है उनकी तो याद भी नहीं आती, याद तो उनको करता है व्यक्ति जो दूर है। बाजू वाले ने कुछ कह दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर दूर कहां बैठा है वहां से एक SMS और इधर हलचल। तो सबसे पहला रूप, दूसरा है रूप रस, रस लास्ट, पहला रूप गंध, गंध तो गंध की इतनी माया नहीं है, सबसे लास्ट वाला है गंध, परंतु हाँ वो भी है, सुगंध के प्रति बहुत अधिक प्रेम और दुर्गंध के प्रति बहुत अधिक घृणा, ये भी योगी के लक्षण नहीं है। योगी को कहीं पर भी रखो वो स्थिर है, कभी दुर्गंध से भी गुजरना पड़े परंतु वहां पर भी संयम, नहीं तो वहां पर घृणा भाव, चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमा ही अगर बदल रही है तो वो योगी नहीं है, क्योंकि हर चीज से गुजरना पड़ेगा, संसार तो दुर्गंध से भरा हुआ एक स्थान है, सब जगह दुर्गंध और सड़ांध है विकारों की। इसमें भी संयम, रूप, गंध, स्पर्श, टच, टच में माया है, टच करो माया चालू, टच से चालू होता है, इंद्रिय इंद्रियों को स्पर्श करती है और इच्छाएं उत्पन्न होती है, फिर इच्छाओं की पूर्ति की दौड़ चालू होती है और वो इच्छाएं अपूर्ण रहती है और फिर क्रोध उत्पन्न होता है स्पर्श से। क्या हम स्पर्श कर रहे और हमारे स्पर्श में कितनी पवित्रता है, वैसा ही स्पर्श है जैसा एक माँ का अपने बच्चे को स्पर्श करती है माँ, वैसा ही यह स्पर्श है। या कुछ और है उसमें, या दैहिक कामनाएं हैं, या दैहिक सुख का भाव है, स्पर्श को वश में करना हो सके तो वो सारी चीजें जिसे स्पर्श करकर मन में हलचल हो उन्हें स्पर्श ही न करना, ये योगी का नियम है, योगियों के लिए नियम है। इसके लिए स्पर्श नहीं करते, स्पर्श करते ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसके लिए जैन साध्वी बहुत सारे जो दिखाए हैं दूर रहते हैं सबसे, इसलिए नहीं कि उनको डर है, क्योंकि उनको कुछ और चीजों का भी ज्ञान है। वो जैन साध्वी हमारे ओपीडी में आती है तुरंत नहीं बैठती है, खड़े ही रहती है। कोई भाई अगर बैठा है वहां, बैठेगी नहीं वहां पर, तुरंत खड़े रहेगी। तो स्पर्श फिर है शब्द साउंड, संसार के गीत। मन में कोई भावनाएं नहीं है, मन में तो बहुत परमात्मा प्रेम है, परंतु संसार के गीत सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो गीत सुनते सुनते वो जो प्रेमी और प्रेमिका है उनके आपस में एक दूसरे के जैसे भाव है, अगर उनके गीत सुनो तो वैसे ही भाव यहां पर भी उत्पन्न हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति। हमने तो अच्छी भावना से सुना था, बाबा बाबा भी कहते थे सुनो, तब गीत थे नहीं, अभी बाबा के बहुत सारे गीत है, परंतु वो छोड़कर ये संसार के थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। उनको सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो वो सुनना खाली सुनना नहीं होता है, उसमें वो जो भाव व्यक्त हो रहे हैं, जिस व्यक्ति ने गीत लिखा है उस गीत, उस गायक का भी, वो जो गा रहा है उसके भी प्रकंपन वाइब्रेशंस उस गीत में है, और जो उसको बेच रहे हैं बाद में कमर्शियल बनाकर, वो सारे वाइब्रेशंस उस एक सॉन्ग में है, और हमको वो सॉन्ग ही अच्छा लग गया और वही गा रहे हैं और वही सुन रहे हैं और वही अच्छा लग रहा है, और वही फिल्म और वही फिल्म के डायलॉग जिनका कोई अध्यात्म आध्यात्मिक चरित्र नहीं है, जिन्हें अध्यात्म का अ ब क पता नहीं है, हम उनके डायलॉग पकड़कर रट कर और फिर यहां एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ब्राह्मण परिवार का। शब्द ये भी पतन है, सूक्ष्म पतन। इसके लिए कभी कभी पहले कुछ कुछ सेंटरों पे गीत बजते रहते हैं और योग में भाई बहने बैठे रहते हैं, वो भी अच्छा है, कम से कम संसार के वातावरण और वाइब्रेशन से तो दूर है, वो योग नहीं है। खाली आधा घंटा तक योग चलता है, एक के बाद गीत बजते ही रहते हैं बजते ही रहते हैं बजते ही रहते हैं। योग में तो आवाज से परे जाना है, परंतु आत्माओं की इतनी अवस्था भी नहीं है कि तुरंत आवाज से परे जाए, पहले तो संसार के प्रभाव से बाहर निकले और वहां आए, इसके लिए वो गीत आवश्यक है। इसके लिए जो जो सुना जाता है वो सब प्रभावित करता है अवचेतन को, वो गीत कैसे है, क्या उसमें भावनाएं हैं, वो रोमांटिक सॉन्ग्स तथाकथित यदि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कई होते हैं ना भाई बहन पुराने गीत उनको अच्छे लगते हैं, परंतु वो पुराने गीत भी लिखने वाले जो थे किस भाव से लिखे थे। चलो हम यदि उन्हें मन ही मन में आध्यात्मिक बना रहे और ऐसा सोच रहे कि हम बाबा की लिख सुन रहे या कह रहे तो दूसरी बात है, परंतु उसको सुनते 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 उसी भाव में स्थित हो सकता है व्यक्ति, और फिर एक दूसरे के प्रति वही एक दूसरे को गीत भेजते। आजकल तो तुरंत भेजने का सुविधा है, शब्द। और फिर है फिर रस, ये सबसे मुख्य है, मुख्य तो सभी है। रस, रस अर्थात जिह्वा, टेस्ट। टेस्ट यदि चलायमान है, यदि जिह्वा का रस बार बार खींचते रहता है, वो भी योगी की निशानी नहीं है। योगी अर्थात जिसकी जिह्वा, जिसका रस, जिसकी पैलेट, कंट्रोल ऑफ पैलेट। एक पूरा चैप्टर है महात्मा गांधी की किताब में, कंट्रोल ऑफ पैलेट एंड ब्रह्मचर्य। बिना कंट्रोल ऑफ पैलेट के, बिना भूख को वश में किए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। इसके लिए जिह्वा को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। वश में करना अर्थात मॉडरेशन इन डाइट जिसको कहते हैं, अर्थात संयमित भोजन। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही अच्छा बना है आज तो बहुत ज्यादा ले लो, वो जो जितना लेना है उतना ही, उसमें कंट्रोल रखना। बीच में चीटिंग नहीं होनी चाहिए, यहां चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो लोग जिम जाते हैं ना, जिम करते हैं बहुत बॉडी कम, बॉडी बिल्ड करने के लिए या वजन कम करने के लिए, उनको वहां सिखाया जाता है जिम में सिखाया जाता है, 6 दिन तो बहुत करते, एक दिन चीटिंग कर लेते, बस सारा खा लेते, 6 दिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, बिल्कुल वजन कम करना है। बहनें होती है ना, उनको वजन बहुत कम करना होता है, तो वो बहुत पावर, बहुत कंट्रोल रखती है। 6 दिन, एक दिन खत्म, मौका क्या मिल गया और खत्म, चीटिंग हो गई। तो ये जो है ट्रिक करता है बहुत, जबान जो है ना ऐसी पछाड़ती है, चारों खाने चित और अचानक। इसके लिए इसको भी सिखाना है, इससे भी बात करनी है। यही तक है बस, इसके बाद तो इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, मीठा था या क्या था। हम लोग पेशेंट को इधर से नली डालते कभी कभी, या नाक से नली डालते, उसको बेचारे टेस्ट का पता ही नहीं चलता है। यहां से नली डाल दो, अब जो भी खिलाओ वो सीधा पेट में जाता है टेस्ट को बाईपास करके, पर जिंदा तो रहता है। तो प्रश्न एक ही है, क्या मैं जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं? क्या हम खाने के लिए ब्राह्मण बने थे या खा रहे हैं ताकि इस ब्राह्मण जीवन में तपस्या कर सके? ये एक ही सिंपल प्रश्न है, खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है, वो है रस। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, पांचों ही चीजों में, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच, पांचों को ही वश में करना अर्थात योगी। ओम शांति।